તારીખ 9/11/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 374 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 122
પત્રાંક 374 પેજ 331 સૌભાગ્યભાઈ પે લિખા હુઆ યે પત્ર હૈ सुभाष भाई की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर थी और इस कारण से कितने आर्थिक विषय में उनके परिणाम बिगड़ते थे, गिरते थे, तो उसी विषय में उपाध्याय ने बार बार मार्गदर्शन दिया है। इस पत्र में भी कुछ ऐसे विषय चला है। चाहे जितनी विपत्तियां आ पड़े, आर्थिक कठिनाई चाहे जितनी आए, तथापि ज्ञानी द्वारा सांसारिक फल की इच्छा करने योग्य नहीं है। ज्ञानी के पास से कोई सांसारिक फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी का संग तो केवल पारमार्थिक हेतु से ही करना चाहिए और दूसरा कोई भी हेतु से नहीं करना चाहिए। बस उतना लक्ष्य रहे तो जीव को अपने परिणाम में हमेशा हमेशा पारमार्थिक लाभ होने का कारण बनेगा। यहाँ तो सौभाग्य भाई को आर्थिक कठिनाई थी, तो कुछ आर्थिक लाभ हो जाए ऐसे इनके परिणाम रहते थे। कृपालु देव एक महापुरुष हैं और कई प्रकार की लब्धियां भी है, चमत्कार कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी मान्यता चलती थी और अभी भी चलती है, पहले भी चलती थी अभी भी चलती है। तो सुभाष भाई को बहुत तकलीफ थी, तो उनके परिणाम कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि मुझे कोई आर्थिक लाभ हो जाए तो ठीक है, कोई मुझे ऐसी बात बता दे या मैं कोई ऐसा व्यापार करूं या कुछ ऐसा कोई मुझे कारण बन जाए कि मेरी आर्थिक कठिनाई बंद हो जाए, उस विषय में वो स्पष्ट लिखते हैं कि चाहे जितनी विपत्तियां पड़े, कितनी भी कठिनाई बढ़ जाए, तथापि ज्ञानी द्वारा सांसारिक फल की इच्छा करनी योग्य नहीं है। ये बात रही कोई आर्थिक विषय की, लेकिन ज्ञानी के द्वारा मान सम्मान बढ़ जाए, स्थान बढ़ जाए, ऐसे भी इच्छा करने योग्य नहीं है, ऐसी भी वांछा होने योग्य नहीं है। दो प्रकार की वांछा रहती है, जिसको आर्थिक कठिनाई होती है उनको उनकी चिंता रहती है, और जिसको आर्थिक कठिनाई नहीं है उनको मान की भी अपेक्षा हो जाया करती है। ये दोनों बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अपना पारमार्थिक नुकसान होता है और पारमार्थिक लाभ लेने के हेतु एक निष्ठा से, एक लक्ष्य से, एक पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही संग करना चाहिए। ऐसा होता था, पहचान होने के बाद भी ये हो जाता था। क्या वो इस बात को नहीं जानते थे कि मेरे इस परिणाम से मुझे नुकसान होता है, वैसी बात नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि मेरे ये परिणाम ठीक नहीं है, मेरे परिणाम से मुझे पारमार्थिक नुकसान होता है और मेरे परिणाम ऐसे होने ही नहीं चाहिए। वो अच्छी तरह जानते थे, फिर भी अपने कुछ ऐसी योग्यता थी जिसे ये परिणाम हो जाते थे, नहीं चाहते हुए भी हो जाते थे। और ऐसा होता है कि सभी परिणाम चाहते हैं वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं चाहते हैं वैसे भी परिणाम हो सकते हैं, हो जाते हैं मुमुक्षु को भी, तो उनको भी होते थे।
ऐसा नहीं हो सकता कि अपनापन बहुत इतना ज्यादा था कृपालु देव के साथ, इसलिए अपनी सब चीज उनके सामने रख देते थे।
वो तो ठीक है, लेकिन परिणाम होते थे तब तो रखते थे ना।
पर घर वालों पर कुछ प्रेशर आता होगा,
कुछ भी हो, घर के वो मुखिया
आपके हैं, ये अपने
मुख्य संचालक थे, और कृपालु देव को तो वो हर परिणाम को बताते थे, तो उसमें वो परिणाम को भी बता देते थे कि मेरे ऐसे भी परिणाम होते हैं, लेकिन होते तो थे ना, तब तो बताते थे, तो ये होते थे। ये कोई गुण तो नहीं थे, सद्गुण तो नहीं थे, ये दोष थे, दोष के परिणाम होते थे, और वो बताते थे। उदय आया हुआ अंतराय सम परिणाम से वेदन करने योग्य है, विषम परिणाम से वेदन करने योग्य नहीं है। जो भी उदय आया है कठिनाई का, अंतराय का, उसको लाभांतराय कहते हैं। आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है तो लाभ में अंतराय होता है। प्रयत्न तो करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन कभी नुकसान हो जाता था, कभी कमाई नहीं होती थी। खास करके जहाँ वो रहते थे, ठहरते थे, साइला में, वो झालावाड़ का एरिया है, हमारा भी नेटिव प्लेस झालावाड़ में ही है, लेकिन कुछ दूर है, और वहाँ की जमीन में हमेशा बारिश कम हुई है, कम होती है, तो वहाँ रुई का कापूस का क्रॉप होता है। रुई को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी में भी वो पक जाता है। तो क्या है कि उन जमाने में तो सीजनल बिजनेस करते थे, छोटे गांव में गांवड़े में रहने वाले क्या करते थे कि जब सीजन आते थे तो खेडूत लोगों से, खेती करने वालों से, कृषिकार से वो कापूस खरीदते थे, रुई खरीद लेते थे, फिर उनको जिनिंग करवा लेते थे, प्रेसिंग करवा लेते थे, गठरी बांध करके मिल वाले को बेच देते थे, या कभी ऐसा कैसे भी बेच देते थे। लेकिन जब प्रारब्ध अनुकूल नहीं होता है तो माल खरीदते और बाजार का भाव बैठ जाता है, गिर जाता है। बाजार के भाव तेज होते हैं तो मुनाफा मिलता है, मार्केट डाउन होती है तो मुनाफा नहीं मिलता है। तो ऐसा हुआ करता था, उसको कहते हैं अंतराय। उसको क्या कहते हैं? अंतराय। प्रयास तो किया मुनाफा लेने का और नुकसान हुआ, यानी मुनाफा नहीं मिला। तो ऐसा अंतराय आ जाता है, आता रहता है, उसको सम परिणाम से वेदन करना। उस वक्त नाराज नहीं होना चाहिए, परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। संपरिणाम मैंने न राग हो न द्वेष हो। कमाई हो जाए तो परिणाम एकदम अच्छे हो जाए, राग बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर नुकसान हुए, कमाई नहीं हुए, तो परिणाम में द्वेष नहीं होना चाहिए। जान लेना चाहिए कि कुछ उदय ऐसा चल रहा है, बगल में कोई ऐसा उदय चल रहा है तो ऐसा हो रहा है। इसमें नुकसान हुआ तो आत्मा में नहीं हुआ, और लाभ हुआ तो आत्मा में लाभ नहीं होता है, क्योंकि लाभ आत्मा में कुछ आता नहीं और आत्मा में से कुछ जाता भी नहीं। जो कुछ होता है वो तो आत्मा के बाहर संयोगिक फेरफार होता है, ये संयोगिक फेरफार से आत्मा को लाभ नुकसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा में से कुछ आना जाना होता नहीं है। इस प्रकार से आत्मा के अबटघट बटघट जिसमें नहीं होते हैं, ऐसे स्वरूप को अवलंबन करके परिणाम को संभाव में रखना, स्थिर रखना, ऐसा प्रयास, ऐसे इस प्रकार का पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, प्रयास तो करें। संपरिणाम तो ज्ञानी को ही होता है, क्योंकि संपरिणाम वो वितरा के परिणाम है, और वितरागता तो ज्ञान दशा में ही होती है, मुमुक्षु दशा में वितरागता नहीं होती है। लेकिन संपरिणाम का या वितरागता का प्रयास तो हो सकता है, तो प्रयास करे तो इस भूमिका सही भूमिका है इसकी। अपना अवलोकन करने से
ये जो बात हुआ कि ऐसे इस प्रकार का उदय था इसलिए ऐसा हुआ, तो ये तो बौद्धिक लेवल पे समाधान आने से कषाय की मंदता होने के कारण भी एक बार दब जाती है परिणाम,
ठीक है।
एक होता है अभाव की वजह जाती है, इसमें यथार्थता का कौन सा प्रकार कैसे हो?
तो क्या अपना अवलोकन करे तो पता चल जाता है कि हमने बौद्धिक लेवल पर समाधान करके शांति रखी, या हमने कुछ आत्मा के अवलंबन से पुरुषार्थ करके फीलिंग लेवल पे हमको समाधान हुआ, कैसे हुआ वो मालूम पड़ जाता है, क्योंकि दोनों में अंतर बहुत है, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा एक बौद्धिक लेवल पर जब होता है तब अपनत्व है वो चालू रहता है, अपनत्व में फेरफार नहीं होता है, मेरा उदय ऐसा चालू हो वैसा लगता है। क्या है ये मेरा उदय है ऐसा लगता है, जब फीलिंग लेवल पर मैं अपनत्व तोड़ने का पुरुषार्थ चलता है। इस प्रकार से दोनों में उल्टा सुलटा फर्क है, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, उसका अंतर मालूम पड़ सकता है। उसमें कभी धोखा हो जाता है कि बौद्धिक लेवल पर समाधान आता है ना तो कषायमंद हो जाता है, और प्रयोग के काल में समाधान आता है तो कषाय रसमंद होता है। तो कषायमंद हुआ या कषाय रसमंद हुआ ये अगर अवलोकन से पता नहीं चलता है तो उनको धोखा होता है कि चलो मुझे ज्ञान भी हुआ और ज्ञान का फल शांति भी मिली, मेरा ज्ञान भी सही है और ज्ञान के फल में शांति मिलती है तो मुझे शांति भी मिली।
जैसे जो समाधान हुआ तो वापस से वो नवीन समाधान को पैदा नहीं करेगा।
हाँ,
अगर वापस नवीन समाधान को पैदा करता है तो इसका मतलब समाधान सही नहीं है।
समाधान सही नहीं है, इसमें भी दो प्रकार है, प्रकृतिगत कभी ये परिणाम गिर जाते हैं। इसमें क्या है, असमाधान तो नहीं रहा, सुभाग भाई को असमाधान नहीं था, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि परिणाम हो जाते थे। हाँ, ऐसा बनता है, क्योंकि प्रकृति का मंद होना होता है, रसमंद होना होता है, प्रकृति जाती नहीं, प्रकृति बारहवें गुण स्थान के अंत में जाती है, चतुर्थ गुण स्थान में भी नहीं जाती। हाँ, पंचम छठे कोई बुद्धिपूर्वक के परिणाम तो छठे गुण स्थान तक होएगा, एक बुद्धिपूर्वक का दसवें तक होएगा, नौ में दसवें तक हो, लेकिन फर्क पड़ता है, जाति का फर्क पड़ता है, रस का फर्क पड़ता है, और रस की डिग्री से ही जाति का फर्क गिना जाता है, ऐसी बात है। इसलिए कोई ऐसा समझे कि प्रकृति क्यों नहीं जाती है, ऐसा नहीं बनता, प्रकृति नहीं जाएगी, प्रकृति में फर्क हो जाएगा, ये बात बनेगी। क्या ज्ञानी को गुस्सा नहीं आता क्या? लेकिन अनंतानुबंधि का नहीं होता, जैसे चिकने परिणाम नहीं होते, छूट जाते हैं, चले जाने में देर नहीं लगती, बदलने में देर नहीं लगती। श्रद्धा संबंधी नहीं है और एकत्व संबंधी भी नहीं है, एकत्व भी नहीं होता है। लेकिन जो कुछ होता है उसका बाहरी देखाव तो अच्छा नहीं होता है, जो भी दोष होता है इसका बाहरी दिखाव तो अच्छा नहीं होता है, वो दिखाव तो बिगड़ता ही है। और इसलिए ज्ञानी को भी लोग पहचान नहीं सके, इसका यही कारण है कि कभी वो गुस्सा वाले भी दिखते हैं। वो तो एक ऐसी मोटी चीज है कि गुस्सा सबको पता चल जाता है, क्रोध का पता तो सबको चल जाता है कि इसके अभी क्रोध में है, गर्म हो गए हैं, पता चल जाएगा। लेकिन वो चिकने परिणाम नहीं होते। विषय मतलब
जैसे कि स्व के क्षेत्र में जब कोई भी बात आती है तब वहाँ पे क्रोध आता है, पर के विषय में क्रोध नहीं आता, ऐसा होता है।
दृष्टांत रूप से प्रॉपर कैसे है?
जैसे बस से रिलेटेड कोई बात है, जैसे कोई और व्यक्ति विशेष से रिलेटेड, उससे रिलेटेड तक क्रोध का परिणाम लगता नहीं आए, पर जैसे खुद के जैसे स्वाध्याय का बात हुआ या जो भी है उसमें अगर कोई बाधा बन के आता है या तो उस समय क्रोध के परिणाम।
पर के विषय में तो संसारियों को भी नहीं आता है, पर के विषय में तो दूसरे लोगों को भी नहीं आएगा।
जहाँ अपना संभाल बराबर नहीं किया तो गुस्सा आ जाता है, वो शरीर का संभाल से रिलेटेड है, गुस्सा आ जाता है। संसारियों को तो आता ही है उसमें कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरा संभाल नहीं किया।
उसमें क्या है, अंदर में कर्म प्रकृति का उदय आता है, बाहर में कोई भी बाना हो ऐसा कोई नियम नहीं है, बाहर के निमित्त का कोई नियम नहीं है, अंदर में प्रकृति का उदय आता है और उसमें आंशिक जोड़ान हुए या पूरा जोड़ान हुए दो में से एक बात बन सकती है।
आंशिक जो जोड़ान होता है उसी समय जोड़ान है उसका भान पूरा रहता है।
हाँ।
और जो शुद्ध दशा में रहता है उसके समय का अंतराल रहता है। उसी समय चालू में ये मेरा ये भूल रूप परिणाम ये चल रहा है, ये नहीं पकड़ में आता है,
फर्क पड़ता है,
फर्क पड़ता है।
मुमुक्षु को तत्काल भेद ज्ञान नहीं होता है, कुछ समय का अंतर रह करके भेद ज्ञान होता है, जबकि ज्ञानी को तत्काल भेद ज्ञान चालू ही होता है, उसका तो चालू होता ही है, सतत चालू है, उदय भी सतत चालू है और भेद ज्ञान भी सतत चालू है, उनका तो दोनों लाइन चालू ही है। जबकि मुमुक्षु को वो लाइन चालू हुई नहीं तो चालू करना पड़ता है, चालू होता है तो ऐसा है। तुम्हारे आजीविका संबंधी स्थिति बहुत वक्त से बहुत समय से जानने में है। कृपालुदेव जानते थे कि आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है, वो जानते थे। तुम्हारे आजीविका संबंधी स्थिति बहुत समय से जानने में है, यह पूर्व कर्म का योग है। ये क्या है, आपका पूर्व कर्म है, वर्तमान पुरुषार्थ उसमें कामयाब होता नहीं है, ये पूर्व कर्म का योग है। तो ऐसा होता है, ऐसा ही पूर्व कर्म का योग है, क्या करोगे। चिकना नहीं है ना, कोई भी विभाव चिकना नहीं है तो आगे पीछे लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि रस नहीं है।
जितना समय का उदय रहा उस समय भिन्नत्व रह करके
बस खत्म खत्म, बस अस्थिरता, उसको क्या बोलते हैं, अस्थिरता आती है। तो अस्थिरता के बस भिन्नत्व रह करके झुक जाता है परिणाम, भिन्नत्व अंतर में रख करके बाहर में झुक जाता है, ऐसा बनता है। यथार्थ ज्ञान जिसको है ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण करे नहीं। देखो क्या बोले, इसलिए तुम जो अनुकूलता को लेकर के अनुकूलता हाँ तुमने जो आकुलता को लेकर के इच्छा बताई ये निवृत्त करने योग्य है। क्या कहते हैं, यथार्थ ज्ञान जिसको है ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण करे नहीं। मैंने वो तो उदय को संपरिणाम से भोगने का ही पुरुषार्थ करेगा जिसको यथार्थ ज्ञान है वो। इसलिए तुमने जो आकुलता के लेकर के जो इच्छा बताई, कोई इच्छा बताई होगी क्या, ऐसा हो सकता है क्या, आपसे ऐसा हो सकता है क्या, आप ऐसा काम कर सकते हैं हमारा क्या, कभी कृपालु देव से भी कोई काम कराना चाहा है तो वो इच्छा आपको निवृत्त करने योग्य है, यानी वो इच्छा छोड़ देने योग्य है। हमारे से ऐसी इच्छा आप मत करिए। ज्ञानी के पास से सांसारिक, ज्ञानी के पास सांसारिक वैभव हो, मैंने ज्ञानी श्रीमंत हो और मुमुक्षु दरिद्र हो, ऐसा योग हो तो भी मुमुक्षु को कोई भी प्रकार से यह इच्छा करना योग्य नहीं है कि इस वैभव में से मुझे कुछ मिले। न मुमुक्षु को ज्ञानी के पास से इच्छा करने योग्य है, न मुमुक्षु को दूसरा मुमुक्षु से भी इच्छा करने योग्य है। लिमिट तो वहां तक की है। क्यों कि याचना करना ये ज्ञानी के मार्ग से विरुद्ध है, दीनता में आ जाता है, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। वो अनुकूलता को उतना चाहता है और प्रतिकूलता को छोड़ना चाहता है कि उसमें अंदर में पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, उसका पुरुषार्थ बाहर बह जाएगा। इसलिए बाह्य संयोगों के कारण से किसी भी प्रकार की इच्छा मुमुक्षु से या ज्ञानी से नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी के पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षु को किसी भी प्रकार से वह इच्छना वह चाहना योग्य नहीं है। बहुत करके ज्ञानी के पास वैसा वैभव होता है तो वो मुमुक्षु की विपत्ति टालने के लिए उपयोगी होते हैं। ज्ञानी को तो वात्सल्य होता है तो बहुभाग तो ज्ञानी है, वो मुमुक्षु की कठिनाई को दूर करता है। अगर अपने पास कुछ है तो मुमुक्षु को दे देता है कि चलो हमको तो ममत्व है ही नहीं, तुम तो उपयोग करो इसका, तो वो तो उनको देते हैं वात्सल्य से। पारमार्थिक वैभव से ज्ञानी मुमुक्षु को सांसारिक फल आप देने का चाहते नहीं है, क्योंकि अकर्तव्य को ज्ञानी करते नहीं। क्या कहते हैं कि ज्ञानी के पास कोई पारमार्थिक वैभव हो, मैंने परमार्थ के कारण से कोई लब्धि हो, कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, तो उसका प्रयोग वो मुमुक्षु को सांसारिक फल देने के लिए नहीं करते। इस प्रकार से वो वात्सल्य नहीं करते। वात्सल्य करते कभी तो जो कुछ चीज वस्तु पैसे हो दे देते हैं, लेकिन कोई रिद्धि सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। मुमुक्षु को लाभ कर दे तो चलो आप चांदी का व्यापार कर लीजिए आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, आप रुई का व्यापार कर लीजिए आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकर्तव्य है। वो ज्ञानी को भी अकर्तव्य है। कहीं भी आत्मा की पवित्रता के कारण से रिद्धि सिद्धि का योग बैठ जाता है ज्ञानी को, तो ज्ञानी न अपने लिए इसका प्रयोग करता है, न ज्ञानी दूसरे मुमुक्षु के लिए भी इसका प्रयोग करता है। इसका प्रयोग ज्ञानी नहीं करेंगे, सांसारिक हेतु से नहीं करेंगे, तो उसको सामने भी देखेगा नहीं। और कृपालु देव को कुछ लब्धियां थी लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग किया नहीं था, एक पत्र में उल्लेख किया है उन्होंने। धीरज न रहे, इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति है ऐसा हम जानते हैं। धीरज नहीं रहे, धीरज टूट जाए, ऐसी स्थिति थी। कैसे कि घर में रोटी खाने के लिए अनाज लाने के पैसे नहीं थे, कभी उधार ले आते थे, छोटे गांव में तो परिचय होता है, एक दफे तो उधार ले आया, फिर वो पैसा देने के बाद तो दूसरा मिलेगा ना, अगला पैसा नहीं देवे और दूसरा भी उधार ले ले में, वो कैसे बनेगा, उसको क्या करे। और घर में परिवार को क्या ऐसा बोले कि तो पैसा नहीं है इसलिए हम दाना पानी ला नहीं पाएंगे, क्या करें। उस वक्त मुमुक्षु की भूमिका में धीरज रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन बात है। धीरज न रहे, इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति है ऐसा हम जानते हैं, फिर भी ऐसा इसके बावजूद भी धीरज में एक अंश भी न्यूनता नहीं होने देना, यही तुमको कर्तव्य है। देखो क्या उपदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, जानते हैं ऐसा हो सकता है लेकिन एक अंश भी न्यूनता नहीं होनी चाहिए धीरज में, बिल्कुल पूरी पूरी धीरज आपकी रहनी चाहिए। मैं तो ये अपेक्षा रखता हूं कि आपकी पूरी धीरज होनी चाहिए। और ये यथार्थ बोध पाने का मुख्य मार्ग है। अगर ऐसी स्थिति में धीरज रही तो आपको सम्यक ज्ञान होने में देर लगेगी नहीं, तो आपको सम्यक ज्ञान का फायदा होवे वो हम चाहेंगे, या आपका उदय में कुछ थोड़ा अनुकूलता हो जाए वो हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे। क्या घर के लोग खाए उतने आटे के सामने सम्यक ज्ञान को हम तुल दें या नहीं दे, क्या करें हम बताओ। सम्यक ज्ञान को आटे से तो तुला जाता नहीं है, उस मुमुक्षु की तैयारी वहां से होती है। तो इस तरह से तैयार होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि रोटी के लिए आटा नहीं मिलेगा, तो दो चार रोटी के लिए तो इतना तो आटा होता है, इतना आटा के लिए मेरा अनंत सामर्थ्यवंत आत्म स्वरूप को मैं खो दूं क्या, बेच दूं क्या, या इसका वेट के बराबर इसका वेट है, वजन किसका ज्यादा। हाँ कुछ भी हो जाए, नहीं मिलो तो वो भी नहीं मिलो, लेकिन मेरा पुरुषार्थ में कोई भी कमी आएगी नहीं, ऐसा पावर मोक्ष की भूमिका में खड़ा हो जाता है। फिर ज्ञान दशा आती है, इसके पहले ज्ञान दशा नहीं आती, ज्ञान दशा बाद में आती है, उतना पावर चढ़ता है कि क्या हो गया, दो चार रोटी का आटा मिला नहीं मिला इससे मेरा क्या हो गया, मेरा आत्मा में क्या फर्क पड़ता है, इससे मेरे में क्या फर्क पड़ सकता है, मुझे कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी हो जाओ, नहीं मिलो तो नहीं मिलो, मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा। इस काल में उल्टा ना मेरा पुरुषार्थ तेज हो जाएगा, ऐसी पूर्व तैयारी मुमुक्षु को होती है तो उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। पर पहले से ही कमजोर होता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सब प्रकार की अनुकूलताएं चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूलताएं आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, तो उनका तो पूर्वग्रह ही अच्छा नहीं है, तो उनका तो परिणाम आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, उसका पुरुषार्थ नहीं चलेगा। वास्तव में मेरा स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है, वर्तमान में ही मुझे किसी की जरूरत नहीं है, न किसी का आलंबन की जरूरत है, न किसी की अपेक्षा मुझे है। मैं निरालंब निरपेक्ष स्वरूप हूँ, अपने पुरुषार्थ में मस्त रहूंगा। ऐसा उनको शुरू से ही जोर रहता है तो आत्मज्ञान होने हो सकता है, वरना आत्मज्ञान नहीं होगा। हाल तो हमारे पास भी ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है, 25 साल की उम्र है तो लिखते के हाल तो हमारे पास भी कोई ऐसा सांसारिक अनुकूलता नहीं है कि तुमको उस द्वारा धीरज का कारण हो सके। परंतु ऐसा प्रसंग लक्ष्य में रहता है, बाकी दूसरा प्रयत्न तो कर्तव्य नहीं है। क्या कहते हैं कि हमारे पास भी उतनी अनुकूलता नहीं है कि आपको हम मदद कर सके, परंतु वो बात हमारे लक्ष्य में है, ऐसा प्रसंग हमारे लक्ष्य में है कि अगर कोई ऐसा प्रसंग होगा तो हम कुछ करेंगे, तो ठीक है। बाकी या कोई ऐसा जॉब ऐसा कोई प्रसंग हमारे पास नहीं है, साधन नहीं है कि आपको वो करा दे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो कभी इसका भी ना दे दिया है, कभी ऐसी बातों का भी ना दिया है कि हम आपको इस प्रकार की मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्यों हम चाहते हैं कि आपके जो कुटुंब प्रतिबंध के परिणाम हैं वो टूट जाए। अगर हम मदद करेंगे तो आपको तो कुटुंब प्रतिबंध और तगड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। तो आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो, मैंने राग छोड़ दें, इसी कारण से ऐसा उदय आया है राग छोड़ाने के लिए, तो छोड़ दो, हम आपका राग बढ़ाना चाहते नहीं हैं। और अगर ऐसा प्रसंग राग छुड़ाने के लिए आया है तो वो आपके लिए अच्छा ही है, वो आपकी भलाई के लिए हुआ है, ऐसा मान करके पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा भी किया है और ऐसा भी लिखा है। कोई भी प्रकार से भविष्य का सांसारिक विचार छोड़ करके वर्तमान में संपने प्रवर्तने का दृढ़ निश्चय करना, ये तुमको योग्य है। क्या कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति तो अच्छी नहीं है तो भविष्य में क्या होगा, आगे कैसा आयु बीतेगा, कैसा काल निकलेगा, इसके कोई भविष्य का विचार छोड़ देना। ये विचार भविष्य का विचार प्राय सभी मनुष्य को होता ही है, सभी मनुष्य को, जगत के सभी मनुष्य को भविष्य की चिंता इसके वर्तमान को हमेशा हमेशा खा जाती ही है। वर्तमान में कितनी भी अनुकूलता होवे तो भी भविष्य की चिंता, भविष्य के विचार में वो वर्तमान को खोता है, ये हमेशा हमेशा बनता है और वही ज्ञान प्राप्ति में बाधक कारण है, क्योंकि उसको आत्मा का अवलंबन वर्तमान में लेने नहीं देगा और संयोग का अवलंबन छूटेगा नहीं, ये हालत बनेगी। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भविष्य का सांसारिक विचार छोड़ करके वर्तमान में संपने प्रवर्तने का दृढ़ निश्चय करना, यही तुमको योग्य है। कि वर्तमान में जो भी उदय है उसमें संभाव में रहे, भविष्य की कोई चिंता करना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। वो लिखा है, आप चिंता छोड़ दो भविष्य के, देखा जाएगा, भविष्य की बात है, भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। उस वचन में बहुत गंभीरता है, ऐसा करके लिखा है। गंभीरता है मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको और कठिनाई आ गई तो हम मदद कर देंगे, लेकिन आपके परिणाम को गिरने नहीं देंगे। देखा जाएगा का मतलब वो है, गंभीरता वो बात की थी कि आपके परिणाम को गिरने नहीं देंगे। क्या कहते हैं, ऐसा निश्चय करना योग्य है भविष्य में जो होने योग्य होगा वह होगा, भविष्य में जो होने योग्य होगा वही होगा और वह अनिवार्य है। उसका निवारण इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई कर सकते नहीं है। कोई भी जीव को या अपने खुद को स्वयं को जो भी उदय आता है उस उदय में फेरफार करने का किसी का अधिकार होता ही नहीं। न कोई देव मदद कर सकता है, मैंने इंद्र भी मदद कर सकता है, नरेंद्र मैंने कोई राजा भी मदद कर सकता है, और जिनेंद्र मैंने तीर्थंकर देव भी मदद कर सकता है। उदय के प्रसंग में किसी का फेरफार कर होना वो संभव है ही नहीं। भविष्य में जो होगा योग्य होगा वही होगा, जो भी होगा योग्य ही होगा। तो बीमारी आई क्या योग्य है? पुरुषार्थ उठाने के लिए योग्य है क्या? और निर्धनता आ जाए वो योग्य है क्या कि पुरुषार्थ उठाने के लिए वह भी योग्य है? इसलिए भविष्य की चिंता के आधार से या भविष्य की अनुकूलता के आधार से कोई जीव का पुरुषार्थ चल सकता नहीं है। ये तो पुरुषार्थ को कमजोर होने की बात है, पुरुषार्थ बढ़ाने की बात है ही नहीं। वर्तमान में हिम्मत चाहिए। नहीं, उसमें क्या है, वो तो मानिक बाई का मृत्यु हो गया था, इसकी पत्नी का डेथ हो गया, तो किसने बोला कि ये तो मर गई, तो क्या अच्छा हुआ क्या, पत्नी मर गई तो भी अच्छा हुआ, ऐसा बोले कि क्यों अच्छा हुआ, तो क्या जंजाल मिटी मेरे तो, भलू थयो भांगी जंजाल सुखे भजसु श्री गोपाल, गोपाल मैंने कृष्ण। अब कृष्ण को भजन में कोई बाधा नहीं डालेगा, तो मेरा कृष्ण का भजन अच्छा रहे, अच्छी तरह से चलेगा, ठीक। तो मार्गानुसार ही थे ना, मार्गानुसार ही थे, वो तो अच्छा पद लिखा है कि क्या हुआ, जहाँ लगी आत्मा तत्व चिन्ना नहीं, वहां लगी साधना सर्व झूठी, क्या हुआ गंगा नया थकी, क्या हुआ जटा बाल बढ़ाने के होने से, और क्या हुआ केश लोचन करने से, जो जैन को भी ले लिया है, इनके लोग तो बाल जटा बढ़ाते हैं और जैन वो केश लोच करते हैं, सबका सबको लिया है उसने लपेटे में, ये सब करने से क्या हो गया, इससे कोई नहीं होता। आत्म तत्व को चिन्ना मैंने अनुभव नहीं किया, ये साधना सर्व झूठी है, जो भी बाह्य साधन है सब झूठे के झूठे हैं। अन्य मत में भी वो भाव निकला है, क्योंकि वो मार्ग से मार्गानुसारी थे इसलिए वो बात निकला है। तो सुभाग भाई ने कभी ये भी बात किया है कि देखो नरसिंह मेहता का को जब जब कठिनाई हुई तो श्री कृष्ण ने मदद किया कि नहीं किया, पर्चा पूरा, वो पर्चा बोलते हैं उनको, उन्होंने चमत्कार किया, क्या जवाब दिया फिर पार्वती ने, नरसिंह मेहता ने कभी इच्छा नहीं की, नरसिंह मेहता ने कभी इच्छा नहीं की थी, क्या आप मेरे को अनुकूलता प्रतिकूलता आई है तो अनुकूलता कर दो, ऐसी इच्छा नरसिंह मेहता ने कभी नहीं किया था। लेकिन अगर भगवान ने कुछ ईश्वर ने किया होगा तो नरसिंह मेहता की इच्छा को ओवरटेक करके किया होगा, बाकी नरसिंह मेहता ने कभी नहीं किया था कि मुझे अनुकूलता दे दो। उन्होंने तो क्या कि ये मेरे लिए अच्छा है, आप मुझे अनुकूलता मत दीजिए। फिर भी कभी किसी ने किया हो तो ओवरटेक कर लिया होगा इनकी इच्छा का, ऐसा करके जवाब दिया है। नरसिंह मेहता ने इच्छा नहीं ऊपरवट जाइने करी हो से जे करी हो से एम कर लिखो से नरसिंह मेहता ए कभी चाहिए नहीं इच्छु नहीं कि मने कई पण लाभ थाय। किसी भी प्रकार के भविष्य के संसार की विचार को छोड़ करके दृढ़ निश्चय से ऐसा लेना कि जो भी होने योग्य है वही होगा और वो अनिवार्य है, ऐसा गिन करके पारमार्थिक पुरुषार्थ के प्रति सन्मुख होना योग्य है, ऐसा गिन करके परमार्थ मैंने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के सन्मुख हो जाना, दूसरी बात परिणाम में होना योग्य नहीं है। कोई भी प्रकार से भी यह लोक लज्जा रूप भय का स्थानक ऐसा जो भविष्य वो विस्मरण करने योग्य है, उसकी चिंता के द्वारा परमार्थ का विस्मरण हो जाता है। क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार से लोक लज्जा रूप भय का स्थानक, क्या अगर हमारी जो दरिद्रता है वो खुली हो जाएगी, लोग जानेंगे कि उसके पास कुछ नहीं रहा, तो लोक में लज्जा आती है कि हमारी इज्जत चली गई, ऐसा जो भविष्य का स्थान है कि भविष्य में हमारी हमारी इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी, इज्जत चली तो नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी जो विचार आता है वो छोड़ देना, क्योंकि उसकी चिंता है, उस चिंता के कारण से आत्मकल्याण का विस्मरण हो जाता है। आत्मकल्याण तो अपने स्वरूप के अवलंबन से होता है, और यहां तो संयोग का अवलंबन ले लिया, तो संयोग का अवलंबन होने से आत्मकल्याण आत्मा का अवलंबन कैसे होगा कि परमार्थ का विस्मरण हो जाएगा। और ऐसा होवे तो महा आपत्ति रूप है, इसलिए वह आपत्ति आए ही नहीं, इतना ही बार बार विचार करना योग्य है। ऐसा होना मतलब परमार्थ का विस्मरण हो जाए, ये तो महाआपत्ति है, इज्जत चली जाए वो महाआपत्ति नहीं है, आत्मकल्याण का मार्ग से च्युत हो जाए वो महाआपत्ति है, और ऐसी आपत्ति आए नहीं, इतना ही बार बार विचार करने योग्य है। बहुत समय से आजीविका और लोक लज्जा का खेद तुमको अंतर में इकट्ठा हुआ है, हम जानते हैं, तुम्हारे परिणाम को हम जानते हैं कि बहुत समय से आजीविका और लोक लज्जा, आजीविका मैंने जीवन निर्वाह, और लोक लज्जा का खेद तुमको अंतर में इकट्ठा हुआ है, उस विषय में अब तो निर्भयपना ही अंगीकार करना योग्य है, आपको बिल्कुल निर्भय हो जाना है, न लोक लज्जा का भय रखना है, न आजीविका का भय रखना है, जो होगा सो होगा। फिर से कहते हैं कि यही कर्तव्य है, देखो कितना वजन दिया है, फिर से कहते हैं कि यही कर्तव्य है, और यथार्थ बोध का यह मुख्य मार्ग है, मार्ग मैंने उपाय, यथार्थ बोध होने का यही उपाय है। क्या सिद्धांत निकलता है यहाँ से कि ये तो एक दृष्टांत है सौभाग्य भाई के उदय का। हर मुमुक्षु को उदय आता है और उसके परिणाम में गड़बड़ या गिरना होता है उदय के काल में ही होता है। अंदर में प्रकृति का उदय आता है या कर्म का उदय आता है, बाहर में कोई वैसा ही संयोग वियोग बन जाता है और परिणाम गिर जाते हैं। सिद्धांत वो निकलता है कि आत्मकल्याण का मार्ग है, वो मार्ग में उदय के काल में संपरिणाम से रहना यही एक आत्मकल्याण का मार्ग है, उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्या कहते हैं कि फिर से कहते हैं कि यही कर्तव्य है, कोई भय से परिणाम गिर जाए वो कर्तव्य नहीं है। इस स्थान में इस प्रसंग में भूल खाना योग्य नहीं है। क्या लिखा है, ऐसे उदय के प्रसंग में भूल करना बिल्कुल योग्य नहीं है। लज्जा और आजीविका मिथ्या है, क्या कहते हैं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं। जाओ आजीविका के अनुसार कमाई नहीं होवे वो तो मिथ्या बात है। क्या बोलते हैं, मिथ्या बात है। और इज्जत चली जाए वो भी मिथ्या बात है। आत्मा को इज्जत बिज्जत क्या है कोई नहीं है, कोई आधार की जरूरत नहीं, कोई इज्जत की भी जरूरत नहीं है। ये इज्जत का बहुत बड़ा हाव होता है और ये हाव हावी हो जाता है दिमाग पर, तो लोक लज्जा लोक संगना छूट सकती नहीं है। इस स्थान में भूल खाना योग्य नहीं, लज्जा और आजीविका मिथ्या है। कुटुंब आदि का ममत्व रखोगे तो भी जो होने योग्य है वही होगा, और संभाव रखोगे तो भी होने योग्य है वही होगा। इसलिए निशंक रूप से निरभिमानी होना योग्य है। ये अभिमान छोड़ दो कि मैं कुटुंब का निर्वाह करता हूँ, मैं कुटुंब चलाता हूँ, मैं कुटुंब की इज्जत रखता हूँ, ये सभी कुटुंब में जो भी मुखिया है वो सबको लागू पड़ता है। क्योंकि मुखिया को ये टेंशन आता है, तो मुखिया को यही होता है ये संभालना चाहिए वो संभाल, हम नहीं संभालें तो कौन संभालेगा। आजकल छोटे मोटे तो संभालते नहीं है, लड़के लोग तो संभालते नहीं है, हमको ही संभालना पड़ता है। हाँ, गाड़ा नीचे कुतरू, गाड़ा के नीचे कुत्ता चलता है ना, तो कभी कभी उसका सर है इसका स्पर्श हो जाता है इसके नीचे के भाग में चेसिस के, तो उनको लगता है कि ये सारा बोझा मैं उठा रहा हूँ, पूरा गाड़ा का मैं जितना जो माल भरा है ना ये मेरे सर पे है, जबकि आगे दो बड़द है वही खींचते हैं, लेकिन नीचे जो कुत्ता चलता है उसको ऐसा भ्रम होता है कि ये पूरा बोझा मेरे पर है। तो देखो कभी कभी मुझे स्पर्श होता है, मालूम पड़ता है, नीचे चलता है गाड़े के साथ साथ। ऐसे जो भी होता है प्रारब्ध अनुसार, और जो मुखिया है वो उसको लगता है कि मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, तो परिणाम की गड़बड़ है, बहुत नुकसान करता है। घर के मुखिया लोग जितना नुकसान करता है ना उतना छोटे मोटे वाले नहीं करते। इसमें दो बात है, जिसको उपाधि करनी है ना उसको सत्ता चलानी है, और जिसको सत्ता चलानी है उसको उपाधि करनी है। अब देख लीजिए, सत्ता और उपाधि एक सिक्के की दो बाजू है, साथ में रहती है। जो उपाधि करेगा ना वो सत्ता चलाएगा कि जैसे मैं कहूँ वैसा वो करना होगा, पर ऐसा करने वाले को उपाधि करनी पड़ेगी, हटो मैं कर देता हूँ, हटो मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, बात खत्म। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मबंध वही करता है, वही नुकसान करता है, और उसको मार्ग पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लिखा कि कुटुंब आदि का ममत्व रखोगे तो भी जो होने योग्य है वही होगा, और उसमें संपना रखोगे तो भी होने योग्य है वही होगा। इसलिए निशंक रूप से निराभिमानी होना योग्य है। ये अभिमान छोड़ दो कि हम कुटुंब का सब कुछ करते हैं, ये अभिमान छोड़ दो। संपरिणाम से परिणमना योग्य है। वो तो कहते थे देखो ना हमारे सामने, देखो ना हम कैसे संपरिणाम से चलते हैं, ऐसे आप हो जाओ, क्यों उपाधि करते हो, हम तो उपाधि में भी समाधि रखते हैं, हमको कोई उपाधि कम नहीं है लेकिन हम तो समाधि में चलते हैं बराबर। संपरिणाम से परिणमना योग्य है, हमारा परिणमन देख करके परिणमन ले आओ, संपरिणाम से परिणमना योग्य है, और यही हमारा बोध है, यही हमारा उपदेश है, और यही हमारा परिणमन भी है। यह जब तक नहीं परिणमन होगा वहां तक यथार्थ बोध भी परिणमेगा नहीं। जहां तक ऐसा प्रयास नहीं होगा संपरिणाम में रहने का, वहां तक यथार्थ ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होने का अवसर आएगा नहीं। तो यथार्थ यानी आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान पाने के लिए उदय में ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, उदय के काल में ही पुरुषार्थ करना होता है, आगे पीछे तो पुरुषार्थ होता नहीं। जो कुछ पुरुषार्थ होता है वो तो उदय के प्रसंग में ही होता है। तो ये पत्र है वो इस तरह से जिसको जिसको भी जैसा उदय हो उसको उस तरह से शिक्षा बोध लेना चाहिए।